खुशी द्वारा हम भगवान की खुशी का नाप तोल कर सकते हैं और उसके आगे का जो श्लोक है उसमें कुछ ऐसी बातें बताई है कि वास्तव में अपने धर्मों में हम क्या हासिल करना चाहते हैं, धर्म का पालन करते हुए हमारी इच्छा क्या है, उस पर दृष्टिपात देखें। तो आगे का श्लोक है, ये पृथ्वी महाराज जब चार कुमारों से उनकी भेंट होती है तब ये चार कुमार ब्राह्मण सनत कुमार सनातन सनत सनंद ये चार कुमार ब्राह्मण होते हुए इन लोगों की प्रशंसा करने के लिए पृथ्वी महाराज स्वयं भगवान का अवतार कहा जाता है। तो ये अवतार वैसे देखे तो अवतार तो भगवान का होता है, तो ये अवतार में जितनी भगवत्ता हमें दिखाई देती है, भगवान का परिचय जितना दिखाई देता है, उसमें ये अपने भक्तों के ऐसे परिश्रम कैसे प्रशंसा करते हैं, क्यों करते हैं? चार कुमार तो ब्रह्मा द्वारा सर्वप्रथम पैदा हुए हैं सृष्टि में, सर्वप्रथम चार कुमार पैदा हुए, उनको ब्रह्मा जी ये चाहते थे कि ये प्रजा पैदा करें, कि ब्रह्मा का मुख्य कर्तव्य है सारी सृष्टि में प्रजा, यानी कि जो जीव भगवान की इच्छा में आए हैं तो ये सृष्टि उनके लिए बनाई गई है, तो उसमें सर्वप्रथम चार कुमार थे, लेकिन वो तो ब्रह्मनिष्ठ थे, भगवान की पहचान उनकी महत्ता ज्ञान द्वारा करते थे। तो इन लोगों को कोई इच्छा नहीं कि संसार की झंझट में पड़े, तो इनके द्वारा इनकी प्रशंसा करके हमें भगवान का परिचय भगवान के मुख से ही, इनके अवतार के मुख से ही हमें प्राप्त होता है। अब क्या कहते हैं पृथ्वी महाराज, देखो नैव लक्ष्यते लोको लोकान पर्यटो अपि यहां यथा सर्वदृशं सर्व आत्मानं हे यस्य हेतुः। पृथ्वी महाराज आगे बोलते हैं चार कुमार को कि यद्यपि आप सारी जो सृष्टि की रचना में आप अपनी स्वेच्छा से विचरते हैं, यानी कि घूमते ही फिरते हैं, तो सामान्य लोग तो आपको जानते ही क्या कौन हो, वैसे अपने हृदय में बैठे हुए परमात्मा को भी नहीं पहचानते, सामान्य लोग को परमात्मा की पहचान नहीं। और ये चार कुमार सारे जगत में जन कल्याण के लिए विचरते हैं, फिर भी इनको नहीं पहचानते, तो अपने परमात्मा अंदर में बैठे कैसे पहचानते? जबकि ये परमात्मा हरेक के हृदय में विराजमान, हरेक के हृदय में परमात्मा विराजमान। ईश्वर है सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठ, भगवत गीता में क्या कहते हैं, हे अर्जुन परमात्मा ईश्वर या नियंता कंट्रोलर ही सिटिंग इन एवरीवन्स हार्ट, हर एक जीव के हृदय में विराजमान। और जैसे भगवत गीता के 13वें अध्याय में भी बताया है कि ये परमात्मा हमारी इच्छा, हम जो कुछ करते हैं इनके साक्षी रहते हैं, इनकी नजर से और नजर बाहर हम कुछ नहीं कर सकते, सब देखते हैं। और अनुमंता भी है, उपद्रष्टा यानी कि साक्षी और अनुमंता यानी कि हमारी इच्छा पूर्ण करने देते, बीच में कोई दखलगिरी भी नहीं करते, हमें चोरी करनी है तो वो भी करने देते हैं, किसी का अच्छा करना है तो वो भी करने देते हैं। इसमें परमात्मा देखते ही रहते, साक्षी और अनुमंता यानी सेंसर, तू जाने तेरी बात जाने, तुझे जो करना है वो कर, मुझे बीच में मत जा। अरे ब्रह्मा या शिव जी भी ये परमात्मा तत्व को नहीं जानते, ये प्रथम आरक्ष है। ब्रह्मा और शिव जी देखो सृष्टि की उत्पत्ति में वेदांत सूत्र के पहले श्लोक में ये कहा गया कि सर्वप्रथम जन्माद्यस्य यतः, उसका विस्तार करके श्रीमद् भागवत में व्यास देव क्या कहते, जन्माद्यस्य यतः अन्वयाद इतरश्चास्य अधिज्ञान स्वराट तेरे ब्रह्मरदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृणाम यथा त्रिसर्गो अम्बुष विनिमय त्रिसर्गो अम्बुष धामना स्वे सदाशु निरस्तम कुहकम सत्यम परम धीमह। भगवान श्री कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्माद्यस्य यतः, जिनके जन्म आदि बहुत विलक्षण है, यानी कि हमारे जैसे जन्म आदि के लक्षण जो जो हैं, हम पैदा होते हैं तो रोते पैदा होते हैं, लेकिन इनका इनका जन्म तो बहुत विलक्षण होता है, यानी कि सामान्य लक्षणों जैसे भगवान के जन्म के लक्षण नहीं। तो जन्माद्यस्य यतः अन्वयाद, अन्वयाद यानी कि इसके अलावा भी इतरह चार से अभिज्ञ, ये हम तो अपने जन्म इत्यादि भूल जाते हैं, बड़े होते हैं तो हम कैसे पैदा हुए हैं, क्या खाया, क्यों रोते थे, ये सभी भूल जाते हैं, तो अगले जन्म की बात ही हमें पता नहीं। लेकिन वो अभिज्ञ स्वराट होते हैं, इतरश्चास्य अभिज्ञ स्वराट, अभिज्ञ यानी पूरी पूरी जानकारी पहले से लेकर अंत तक हर एक जीव की, इसमें चाहे कितनी बार 84 लाख में वो गुटा, लेकिन ऐसे तो असंख्य जीव, ये सभी की बात एक साथ साथ की जानकारी भगवान के पास होती है, इसलिए अभिज्ञ कहते हैं। अभिज्ञ इंग्लिश में ओमनिसियंट कहलाता है, ओमनिसियंट मीन्स ऑल नोइंग, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आजकल के तथाकथित भगवान तथाकथित यानी कि सो कॉल्ड, आजकल के जो भगवान बने बैठते हैं वो लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पास्ट इज पास्ट, फॉरगेट द पास्ट, भगवान कभी भूलते नहीं, ये तो दूसरों को कहते हैं कि यार भूल जाओ कुछ काम में क्या हुआ है तुम्हें क्या। अरे ऐसे तो कोई भगवान होते हैं अभिज्ञ सर्वज्ञ, लेकिन ये अभिज्ञ यानी कि पूरे पूरी जानकारी पहले से लेकर अंत तक सबकी होती है जिसकी। और स्वराट, स्वराट यानी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, किसी किसी की जबरदस्ती नहीं कर सकती, उसकी प्रकृति की भी जबरदस्ती नहीं कर सकती, उसे स्वराट के स्वतंत्र पूर्ण रूप से स्वतंत्र। हम कभी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं, लेकिन भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। वो चाहे जिसको दर्शन देना चाहे उनको ही देते हैं, बाकी को सबको लटकाते फिरते रहते हैं। ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समाज है, उनकी बात है। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, उसने ब्रह्मा के हृदय में सर्वप्रथम वेदों का संचार करके सृष्टि पैदा करने का ज्ञान ब्रह्मा को दिया। ब्रह्मा के हृदय में गायत्री द्वारा भगवान प्रेरणा करते हैं उसको सारी सृष्टि की रचना करें। तो सर्वप्रथम ब्रह्मा को ज्ञान देने वाले कौन थे? भगवान। और ये सृष्टि इस ढंग से पैदा हुई है, किस विचित्रता से पैदा हुई वो तो वही जाने। इस में तो जानने के लिए कोई कोशिश करे तो बड़े बड़े चक्कर में फंस जाते हैं। अरे देवता लोग भी मुह्यन्ति यत् सूरयः, देवता लोग को भारी मुश्किल हो जाती है समझने में, इसलिए मुह्यन्ति कहा। सूर्य सारे देव, सूर असुर, सूर्य यानी सारे देवता लोग भगवान की सृष्टि नहीं समझ पाते। जैसे कि तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय त्रिसर्ग अमृषा, त्रिसर्ग त्रिसर्ग यानी सृष्टि की उत्पत्ति होना, उसको थोड़ी देर टिकाना और बाद में फिर से उसका नाश करना, उसे त्रिसर्ग कहते हैं। ये जब सृष्टि की पैदाश के लिए सर्वप्रथम महाविष्णु ने जो कारणोदक्षाय विष्णु कहलाते हैं, उन्होंने दृष्टि का दान देकर सारे जीवों और शंभु तत्व बनाया, शिवजी जो शिवलिंग और महद्योनि, इसमें बीज यानी कि हर एक जीव को बीज प्रदान करते हैं, भगवत गीता में वही कहते हैं कि सर्व योनिषु कौन्ते मूर्तयन्ति संभवन्ति ताशाम महद्योनि अहम बीज प्रदत्ता। भगवान आदि पिता है हमारे हर एक जीव के उत्पत्ति में, तो वो कैसे कि सृष्टि रचना के पहले ही जीवों को ये सृष्टि जब पैदा नहीं हुई थी लेकिन उसके गर्भ में यानी कि वो उसकी उसका प्रागट्य हो उसे पहले जीवों को दाखिल कर, और ये प्रकट होते हुए सूक्ष्म से लेकर स्थूल स्वरूप, फ्रॉम ग्रॉस टू सॉरी फ्रॉम सटल टू ग्रॉस मैनिफेस्टेशन जिसे कहते हैं, सूक्ष्म से लेकर स्थूल रूप में सारी सृष्टि पैदा हुई, जिसमें तेजो वारी मृदान, पहले अग्नि होता है तेज, तेज में से पानी निकलता है, पानी में से मृदान यानी पृथ्वी। अरे ये तेज में से पृथ्वी कैसे प्रकट हो गई, ये समझने में तो देवताओं का भी दिमाग नहीं चलता। तेजो वारी मृदान यथा विनिमय, विनिमय यानी एक्सचेंज रिएक्शंस, व्यापार विनिमय, कॉमर्शियल एक्सचेंजेस, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्या कर रहा है, विनिमय है। कहा गया ऋषिकेश, मनी एक्सचेंजर, विनिमय, विनिमय मीन्स एक्सचेंज और इंटरेक्शंस। इतने फिजियन डॉलर है तो इतने अमेरिकन डॉलर आ जाएंगे, वो मिनिमम। तेजो वारी मृदाम था त्रिसर्गो अमृषा, त्रिसर्ग अमृषा, उसके बावजूद भी इतना करते यानी कि देवताओं को मोहित करते भी, इतने बावजूद भी क्या कि धाम स्वयं सदा निरस्त कुहकम, अपने स्वयं के धाम में ही बैठे रहते हैं कुहकम, बिना रोक टोक। इनके धाम में, भगवान के धाम में कोई रोक टोक नहीं, कोई उसे ये कहने नहीं है कि भगवान आपने ऐसा ही क्यों किया वैसा ही किया, नो आर्ग्यूमेंट, निरस्त कुहकम, पूर्ण रूप से अपनी ही स्वेच्छा से वहां विचरना। सत्यम परम धीमहि, वही परम सत्य है जिन पर किसी की सत्ता नहीं चलती, जो परमात्मा हृदय में इनका ही अंश रूप से विस्तार हरेक के जीव में होता है, हरेक के जीव के हृदय में होता है, वो सिर्फ साक्षी और अनुमंता यानी सेंक्शनर हमें करने देने भगवान रोक टोक भी नहीं करते, जीव इनका अंश है तो रोक टोक क्यों से। घर तू जीते तेरी इच्छा में आएगा, बाहर लेकिन फरियाद मत कर, हम रोक टोक नहीं करते तो हम फरियाद भी नहीं सुनना चाहते। ऐसे तो भगवान अपने ही गुरु वृंदावन धाम, तो धाम ना स्वयं सदा निरस्त को होता हूं, वहां किसी की बाहरी कोई ताकत की जहां आवश्यकता नहीं या उनकी खलेल भी नहीं है, वो अपने ही धाम में अपने निजी परिकरों के साथ निरस्त कुहकम स्वेच्छा से विचरते रहते हैं सिर्फ अपने आनंद के। तो ऐसे परम सत्य भगवान श्री कृष्ण का ये प्रथम श्लोक व्यासदेव ने ब्रह्मसूत्र की बहुत स्वाभाविक प्रामाणिक टीका श्रीमद् भागवत में की है। तो ये श्लोक जब हम पृथु महाराज के द्वारा हम सुनते हैं कि चार कुमार आप छोटे छोटे बच्चे जैसे नंगे घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन आपकी जो आंतरिक स्थिति है, आप ब्रह्म भगवान के ही व्यवहार में भगवान की प्रति के लिए ही सबको कल्याण की भावना से आप इनके बीच में विचरते रहते हैं, तो आपकी गति यदि सामान्य लोग कैसे जानेंगे कि आप क्यों घूमते फिरते हैं। जैसे अबुद्ध लोग अपने हृदय में बैठे हुए परमात्मा को भी नहीं जानते, तो आप जो परमात्मा के विषय में सोचते रहते हैं हमेशा, तो आपकी गति भी कौन जाने, सही। अरे बड़े बड़े देवता ब्रह्मा और शिव जी भी चक्कर में पड़ जाते हैं भगवान के परमात्मा तत्व को जानते हैं, इसीलिए शिव जी हमेशा अपना मूल रूप जो है इनका जाप करते रहते हैं, वो महाशंकरशन का जाप करते रहते हैं। तो ये श्लोक श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़कर हम समझाने की कोशिश करते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा कि भागवत की शुरुआत में ये कहा गया है कि मुह्यंती यत् सूरेह, यानी कि बड़े बड़े देवता लोग, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, चंद्र, कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं कि ये भगवान के ये परमात्मा तत्व को कैसे समझे। ये भी ऐसा ही हुआ था कि जब कृष्ण भगवान ये पृथ्वी पर 5000 साल पहले स्वयं अपने आप को प्रकट करके विचरते थे वृंदावन में, तो ब्रह्मा और इंद्र ने उनको समझने में गलती की। ब्रह्मा जी और इंद्र दोनों ने इनको समझने में गलती की थी। पता है ब्रह्म विमोहन लीला और गोवर्धन लीला इसी का कारण बताऊं कि जब ये लोग गलती करते हैं तब भगवान को ठीक नहीं समझते। तो जब ये गलतियां इतने बड़े बड़े देवताओं द्वारा होती हैं, तो ये तथाकथित कहने वाले योगी, ज्ञानी और जो परम सत्य, भगवान के परम सत्य जो पूर्ण व्यक्तित्व वाला है, पूर्ण पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम यानी कि भगवान का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से व्यक्त होता है, आध्यात्मिक व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, तो उसे अव्यक्त समझना कितनी महामूर्खता। भगवान के व्यक्त स्वरूप को समझना जिसके लिए मुश्किली होती है, काफी मुश्किली होती है। गांधी जी ने भी यही कहा अपनी आत्मकथा में, आपने पढ़ा होगा कि 5000 साल पहले कृष्ण भगवान हमारी जैसे मनुष्य को बीच में अवतरते हुए विचरते थे, उसे मुझसे शंका, आई डाउट वेदर कृष्ण वॉज मूविंग अराउंड अस, यानी कि भगवान का व्यक्तित्व पहचानने में बड़े बड़े ज्ञानी योगी भी गलती करें, इसमें आश्चर्य की बात है। जब देवताओं गलती कर सकते हैं तो ये भगवान निर्गुण निराकार है ऐसे झूठे दावे पर श्रीमद् भागवत तो टीका करेगा ही कि भगवान के व्यक्तित्व की पहचान करने में ये लोग को काफी मुश्किल भी है, इसलिए गलत धारणा करते हैं कि भगवान निर्गुण है निराकार। इसी तरह बड़े बड़े साधु पुरुष और वैष्णव जैसे कि ये चार कुमार, वैसे सामान्य मनुष्य की नजर में तो अदृश्य जैसे ही है। देखो ये महाराज गप्पे मार रहे कहेंगे, ये महाराज गप्पे मार, ये चार कुमार छोटे नंगे ही हमेशा घूमते फिरते हैं, ये कभी सुना ही नहीं। देखो व्यक्तित्व की पहचान कराने में श्रीमद् भागवत हमें क्या निर्देश करता है, भगवान व्यक्त है अव्यक्त नहीं है। भगवान ने भगवत गीता में भी 12वें अध्याय में अर्जुन ने जब पूछा कि भगवान आपके सगुण यानी कि आध्यात्मिक सगुणात्मक रूप की पूजा करें या अव्यक्त की पूजा करें, तो भगवान क्या जवाब देते हैं, अव्यक्त मेरा प्रभाव है जो मेरे व्यक्त रूप से आया है। जो मूर्ख लोग मुझे अव्यक्त में से व्यक्त समझता है वो छोटी बुद्धि वाले, अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम अबुद्धय। मूर्ख लोग ये समझते हैं कि मैं अव्यक्त था पहले, अभी व्यक्त हुआ हूं। नहीं, भगवान क्या कहते हैं, अव्यक्त मेरा प्रभाव है, इन्फ्लुएंस। फिजी का प्रेसिडेंट कौन है? कोई व्यक्ति है या अव्यक्त है? व्यक्ति है ना। अखबार आप तो मिले नहीं होंगे शायद, कितने मिले हैं, हाथ तो ऊंचा करो। कितने मिले हैं प्रेसिडेंट को? नहीं मिले वो, ये मिले हैं शायद एक्सचेंज कराने के लिए। लेकिन प्रेसिडेंट है कि नहीं है? कैसे जानते हो? अखबार में पढ़ के या टीवी में देख के कि ये प्रेसिडेंट चुना गया है, तो ये तो उसका प्रभाव है। आप व्यक्ति को तो मिलते नहीं, व्यक्ति को तो जानते नहीं, तो लेकिन उसके प्रभाव को तो जानते हैं। इनका पावर क्या है, इनकी सत्ता क्या है, सब जानते हो, सही? बीच में कोई ये भी जानता होगा ये कहां रहता है, कोई किसका एड्रेस पता होगा, एड्रेस पता है कहां रहता है? विश्वनाथ हमें ले गया था, विश्वनाथ मैं घूमने ले जाता था तो वो जगह आती है तो मर्जी ऊपर प्रेसिडेंट रहता है, इसका एड्रेस होता है। तो व्यक्ति होता है, व्यक्ति का प्रभाव होता है, व्यक्ति का एड्रेस भी होता है। तो ये सत्य है, तीनों सत्य है, एक ही चीज के लिए है। तो वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य का की अनुभूति, व्यक्ति का प्रभाव, व्यक्ति का लोकलाइजेशन यानी कि उसका स्थान और व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी, तीनों चीज परम सत्य का ज्ञान। भगवान के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में ये तो उदाहरण है। भगवान परम व्यक्ति है, इनका कहां रहना है, कहां होते हैं, उसका ज्ञान भी वही क्वालिटी का होता है, और उसका प्रभाव जानना वो भी वही क्वालिटी। तो किसी में आंशिक अनुभूति होती है, आंशिक परिचय होता है, किसी में पूर्ण परिचय होता है। पूर्ण परिचय किसमें होता है? यदि आप व्यक्ति के साथ किसी न किसी नाते से जुड़े हो, संबंध से जुड़े हो, संबंध में व्यवहार होता है, और व्यवहार के अंत में आपको कुछ सुख शांति प्रेम इत्यादि संपादित हो, तो तीन चीज, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान, तीन की बात करते हैं। अव्यक्त की उपासना में न तो संबंध हो सकता है। हम सब परिवार में यहां बैठे हैं, कोई पति पत्नी के नाते से जुड़ा है, कोई बेटा पिता के नाते से, कोई मां बेटे के नाते जुड़ा है। संबंध में व्यवहार है, बेटा बेटे की जगह पे रहकर व्यवहार करता है, पिता वात्सल्य भाव से बेटे पर प्यार करता है, माता भी वात्सल्य भाव से, तो ये संबंध होता है, संबंध में व्यवहार होता है। और ये नाता क्यों है? क्योंकि इसमें प्रेम मिलता है, लगाव इसीलिए। लेकिन काम चला होता है संसार में, भगवान के साथ हरेक जीव हर एक आत्मा इनके साथ संबंध में जुड़ी है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जीव मेरा अंश है भगवान दावा कर देते हैं और सनातन है। यह हमेशा का नाता बताते हैं, अंश है और अंशी बेटा बाप का ही तो अंश कहलाता है। तो इसी तरह हर एक जीव भगवान का अंश, अंश होते उसका योग्य व्यवहार होना चाहिए पिता के साथ, ये व्यवहार को भक्ति कहते हैं। भक्ति में प्रेम की प्राप्ति होनी ही चाहिए, भगवत प्राप्ति होती है, भगवान का आकर्षण होता है, भगवान की साथ जो व्यवहार होता है तो निरंतर, कोई वात्सल्य भाव से, कोई माधुर्य भाव से, कोई शांत भाव से, कोई दास्य भाव से, कोई सख्य भाव से, भगवान के साथ व्यवहार करते हैं। ये व्यवहार में प्रेम की प्राप्ति होती है। तो हर एक भाव में भगवान काबिल है, हर एक जीव के साथ व्यवहार करते हैं। तो परमात्मा तो हृदय में बस रहे हैं, इनको जानना, अव्यक्त की उपासना करना ज्ञान द्वारा काफी कठिन बताई दे। भगवान कहते अव्यक्त मेरा ही प्रभाव है, लेकिन उसे पाना ना, जो देहधारियों जिन्होंने ये व्यक्त देह जो सच्चा स्वरूप नहीं है उनके लिए बहुत कठिन, क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्ता आसक्त चेतसा। अव्यक्त की उपासना के लिए जो आसक्त होते हैं ज्ञान द्वारा, हे भगवान निर्गुण है, आप तो मूर्ति पूजा करते हो, ये क्या बकवास, आप तो गॉड इज इम्पर्सनल, वो तो निर्गुण निराकार है, ऐसी धारणा करने वाले ज्ञानी लोग को भगवान का पूरा परिचय नहीं। भगवान तो व्यक्त होते हैं लेकिन वो आध्यात्मिक सगुणात्मक है, इसलिए हम भौतिक सगुणात्मक माध्यम द्वारा इनकी पहचान नहीं कर सकते। तो जो अव्यक्त की उपासना जो आध्यात्मिक उपासना ज्ञान द्वारा है लेकिन न तो कोई संबंध बनाता है, क्योंकि निर्गुण के साथ क्या संबंध होगा। आप यदि झूठे हैं दिखाई तो देते हैं लेकिन आप झूठे हैं तो संबंध भी झूठा होगा, क्यों, आप अव्यक्त हैं। घर में झगड़ा होता है, हम लोग तुरंत एक दूसरे के साथ अव्यक्त बन जाते हैं। घर में झगड़ा होता है, देखो कैसा व्यवहार है, यदि आदमी है फिर भी उसकी कोई गिनती नहीं करता, कौन बोले उसके साथ, व्यक्त व्यवहार बंद हो जाता है। इसीलिए जो हम देहधारी हैं, हमने ये देह झूठा क्यों, क्योंकि असत है, वो भौतिक पदार्थों द्वारा पंच महाभूत द्वारा बना है, काम चलाव है, रूपांतरित हो रहा है, इट चेंजेस कॉन्स्टेंटली, द बॉडी इज चेंजिंग, हमें छोड़ के चला जाएगा, हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। ये सब जानते हुए भी हम ये झूठे देह पर कितना आकर्षित होते हैं, क्योंकि अपने सच्चे देह का भान नहीं। तो जो देहधारी है भौतिक देह है उनके लिए ये अव्यक्त जो भगवान का प्रभाव है बहुत मुश्किल होता है जानना। ये उल्टा धंधा नहीं कर सकते। तो अव्यक्ता ही गतिर दुखम, अव्यक्त की उपासना दुखमय। ये भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहबद्धि अवाप्यते। देहबद्धि हम देही हैं, देह के द्वारा ही हम आगती हैं, इसलिए बारंबार ये देह छोड़कर दूसरा देह अपनाते रहते हैं। लेकिन ये चार कुमार हमारे जैसे देह में नहीं थे, उनकी विशुद्धि तो वो तो वैकुंठ में भी कभी पहुंच जाते हैं। तो सारी दुनिया में विचरना, उनके ज्ञान द्वारा दूसरों को प्रभावित करना और भगवत्ता का परिचय करना, तो इन लोगों को सामान्य मनुष्य कैसे पहचानेंगे, कैसे इन पर विश्वास रखेंगे कि ये होंगे। अरे भागवत तो बहुत कुछ कहता है जो हमारी बुद्धि में जाता ही, अरे बुद्धि भागवती बनानी चाहिए, नित्यम भागवत से हमें अपनी दृष्टि बदलनी चाहिए। समझने के लिए भक्ति की आंखों द्वारा हम भगवान के व्यक्तित्व की पहचान कर सकते हैं। प्रेमांजन छुत भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेश विलोकयती यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूप गोविंद मादि पुरुषम तमाम। ब्रह्मा जी ने ये अकलमंद बात किए हैं, जब उनको अनुभव हुआ तब ये नतीजे पर आते हैं कि साधु लोग की दृष्टि कैसी होती है भगवान को देखने की, कि आंखों में प्रेम का अंजन डालना, भक्ति विलोचन, ये चर्म विलोचन नहीं, चमड़ी की आंखों नहीं, आत्मा जो अनुभव करना है। जैसे हम कहते हैं कभी कभी, अरे भैया ये आंख स्वयं को देखती है, ये तो कैमरा है, लेकिन इसमें छवि का परिचय करने वाला कौन होता है, तो मैं कौन हूं, आत्मा। सुनने वाला कौन है, तो मैं आत्मा। कान थोड़े अपने आप सुनते हैं, कान में तो सिर्फ ये आवाज की तरंगे जाती हैं और जो ज्ञान तंतु द्वारा मगज में रहती है, लेकिन वहां उसका सुनने वाला होता है चेतना द्वारा। आत्मा को पता चलता है, चेतना आत्मा का विषय है, आत्मा का व्यवहार चेतना द्वारा है। तो आत्मा चेतन मन है और वो आत्मा देखती है, इसलिए खोपड़ी में जो ये तरंग आते हैं उसको पहचान। इसी तरह आंखों द्वारा जो दृष्टि होती है वो भी देखने वाला तो आत्मा होता है, लेकिन ये तो परावर्तित प्रतिबिंब देख रहा है। मैं देख रहा हूं कि वृंदावन चंद्र का नाक बहुत बड़ा है, इनके नाक से ज्यादा ये अलग अलगता चेतना द्वारा पहचानी जाती है। तो लेकिन चेतना के पीछे तो मैं हूं, मैं नहीं तो चेतना नहीं, जब चेतना नहीं तो शरीर नहीं, यानी कि मैं निकल जाएगा शरीर में से। तो ये छोटे बालक चार कुमार ये पृथ्वी महाराज के यज्ञ में पधारे और उन्होंने पृथ्वी महाराज ने इनकी प्रशंसा शुरू कर दी, करें आपके जैसे जो हमेशा भगवान के सोचने में ही चित्त डुबोए रखते हैं, आपकी महत्ता कैसे कही जाए, आप तो ऐसे विचरते हैं जन कल्याण के लिए, सामान्य लोग पहचानने में मुश्किलियां अनुभवते हैं। अरे बड़े बड़े देवता भी परमात्मा तत्व को नहीं पहचानते। तो आपके ये अध्यात्म तत्व जो एक सरीखा होता है परमात्मा तत्व के, उसको पहचानने में मुश्किल करेंगे, इसमें स्वाभाविक है। ज्यादातर हम देवताओं की पूजा करते रहते हैं, लेकिन परमात्मा तत्व क्या है जानते हैं? कहीं कहीं तो इतने कम अक्कल हो जाते हैं कि अरे सभी भगवान है करके मारो बोल, जहां खोपड़ी की मर्यादा आ जाती है, सीमा आ जाती है सोचने की, तो हम कह देते हैं सब भगवान है, निकलो यहां से। अरे नारायण जी आपको सब, अरे कि भागवत झूठ नहीं है, ये तो निगम कल्प तरुण कलितम फलम है, सारे वेदों का परिपक्व फल। उसके अलावा और कुछ नहीं होता, सारी वैदिक साहित्य तो उसकी तुलना ऐसे वैसे तो नहीं की जाती। पहले तो हम कौन है नहीं जानते, भगवान नहीं बताते तो हम अपने आप को भी जानने में मुश्किलियां अनुभव करते हैं, हमारे तो ऐसी दशा। देवताओं यत्किंचित जानते हैं लेकिन बारंबार भूल भी जाते हैं, जैसे शिव जी और ब्रह्मा जी भूल जाते हैं कि परमात्मा तत्व कौन है। और प्रभुपाद जी ने ये उसमें बताया कि ब्रह्म विमोहन लीला, ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये छोटा बालक भगवान कैसे हो सकता है, जरा देखो तो सही, सुना तो है, थोड़ी जानकारी भी है। तो उसने क्या किया ब्रह्मा जी ने कि चलो इसकी परीक्षा करो। जब छोटे बच्चे सारे दैया चराते थक गए और आकर कृष्ण के पास बैठे कि चलो हम पिकनिक करें, लंच ले ले अपना सब जो लाए हैं, हाँ, तो दैया वही दूध चरती रही, ये लोग यहां खाते रहे। तो ब्रह्मा जी ने सारी गैया को उठा दिए, हाँ, तो भगवान तो जानते हैं कि ये ब्रह्मा क्या तमाशा कर रहा है। तो उसने बलराम को कहा, ए दाऊ जी जरा देख तो सही, अपनी गैया तो सलामत है ना, जा देख क्या। तो बलराम गए तो वो आया नहीं, चलो मैं भी देख लेता हूं, आप लोग खाओ खाओ हम देख के आते हैं। तो भगवान जैसे दूर हो गए तो ब्रह्मा ने आकर सारे बच्चों को उठा लिया और गुफा में डाल दिया, हाँ, गैया को वहीं से उठा लिया और सारे ग्वालियों को भी गुफा में डाल दिया और एक साल तक बंद रखा है। लेकिन भगवान जो सुने हैं वो तो जानते हैं कि ये ब्रह्मा को जरा पाठ सिखाना है, चलो कैसे। उन्होंने तुरंत ही अपने आप का विस्तार करके इतने ही बालक, इतनी ही गैया बछड़े सब कुछ अपना विस्तार कर दिया, एको बहुष्य, एक में से अनेक हो गए, जितने थे जैसे थे वैसे। और ये लीला इतनी गहरी बन गई कि कभी भी एक ग्वाल बाल के माता पिता को अपने बच्चों पर इतना प्रेम प्रकट नहीं हुआ, गैया को अपने बछड़े पर अभी भी इतना प्रेम नहीं हुआ, इतना प्रेम उमड़ पड़ा। जय श्री राधा वृंदावन की। तो देखो भगवान की करामत क्या है, जितने ग्वाल बाल गैया इत्यादि है भगवान के निज परिकर है, विमुक्त जीव है, भगवान के साथ अपना ये आदान प्रदान करने की भावना करते थे। रामचंद्र जब आए गए तो ऋषि मुनियों भी बहुत सारी भावना करते थे कि भगवान आप हैं, हम आपको वात्सल्य भाव माधुर्य भाव इत्यादि भाव में हम आपके साथ व्यवहार करना चाहते हैं। तो रामचंद्र जी ने कहा मर्यादा इज अवतार में मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तो मर्यादा लेकर आया हूं। जब मेरा मूल स्वरूप जो है कृष्ण वो प्रकट होगा तो आप सबकी इच्छा पूर्ण होगी। इसी तरह स्वयं वेद शास्त्र भगवान की शक्ति है, भगवान के अंश है, वो अध्यात्म के भाव में वो भी भावना करते हैं। श्रुतियां ये भावना क्या, हम भगवान के साथ कैसे व्यवहार करें। तो भगवान ने कहा कि आप भी गोपियां बन जाओ, आप भी सभी अवतार ले लो, मैं आ रहा हूं। तो ये सारा प्रसंग में जो जो माधुर्य और वात्सल्य भाव में भगवान के साथ एक साथ साथ व्यवहार करना चाहते थे, उनकी इच्छा इस मौके पर ब्रह्म विमोहन लीला में कर लेते हैं। इसीलिए जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि ये भागवत की टीका में भगवान की ये सर्वोपरिता, भगवान श्री कृष्ण की सर्वोपरिता, उत्तम पुरुषस्तवीय परमात्मेत्युदारुद अपने उत्तम पुरुषम चरित्र बताते हुए कहते हैं कि भगवान ने एक साथ साथ जो जो इच्छाएं थी इन लोगों की वो वात्सल्य और माधुर्य भाव में उन्होंने तुरंत एक साल तक व्यवहार कर दिया। कोई जानता नहीं था कि हमारे हृदय में इतना प्रेम अपने बच्चों पर क्यों, वात्सल्य भाव। सबकी इच्छा भगवान कृष्ण के अकेले व्यक्तित्व की पर ही थी कि ये हमारा बेटा हो, ये हमारा बेटा हो, कृष्ण ही हमारे बेटे हैं। लेकिन ये तो अपने बेटे हैं तो वो लोग चकावे बढ़ गए प्रेम करने वाले भी कि पता नहीं हमारे हृदय में ऐसी भावना क्यों है कि हमारे बच्चों को इतना प्यार करें। उनको कहा पता था कि ये भगवान के ही सारे रिश्ता है, समझ में आया। एको बहुश्याम, भगवान की ये विलक्षणता है, एक में से अनेक होते हैं। तो क्यों ये मूर्ख जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में भी विस्तार क्यों नहीं करते, कर सकते हैं। इसीलिए हर एक के हृदय में परमात्मा तत्व विराजमान, आत्मा के साथ बैठा है, दोनों सनातन है। लेकिन कठोपनिषद के अनुसार कि एक पेड़ की एक ही डाल पर दोनों पंछी जो समान रूप रंग वाले हैं, लेकिन एक पंछी के मुख में फल है और विह्वल है, यानी कि शोकातुर है, मुख में से फल छोड़ता है, और दूसरे पंछी शांत भाव से उसे देख रहा है, उसके मुख में फल नहीं। यह आत्मा परमात्मा की स्थिति, आत्मा से परमात्मा कभी नहीं होता, उनकी गुणवत्ता एक शरीर ही है, लेकिन आत्मा भुला है अपने व्यवहार को, वो स्वार्थ के लिए अपने ही सुख अपनी अक्ल द्वारा प्राप्त करना चाहता है, जबकि सारी चीजों के लिए उसे भगवान पर आधार रखना पड़ता है। इसलिए वो स्वयं को भी भूल जाता है, मुख में फल होता है ना, तो हम तुरंत क्या कहते हैं, सिक्योरिटी का, ये फल कोई चुरा ले, ये कर रहे हैं। हम काफी घबराते हैं, इसलिए मुहिमान हो जाते हैं। जब फल छोड़ते नहीं तब तक सुख नहीं मिलता, हम परमात्मा की ओर देखने के लिए लायक भी नहीं बनते। इसलिए परमात्मा सब मूर्ख मनुष्यों के लिए ओझल रहते हैं, दूर ही रहते हैं, होते हुए भी उनको पहचानने में मुश्किल है। तो जब जो जो भौतिक शरीर धारण करके आया, जो काम चलाव है, जो उसका सच्चा स्वरूप नहीं है, वो चाहे देवताओं का भी क्यों परमात्मा तत्व जानने में मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बारंबार उसे भूल जाना पड़ता है। ऐसे व्यवहार है देवताओं के, भौतिक व्यवहार में सभी अपने आप को ही खो बैठते हैं। हमें मनुष्य जन्म में ही एकमात्र मौका मिलता है, देवताओं के जन्म में ये मौका नहीं मिलता है, ये बताया गया है। क्यों? क्योंकि हम जितने यहां बिजी हो गए हैं ना, तो देवताओं का अवतार पाकर स्वर्गलोक में तो हम इतने बिजी हो जाते हैं कि कभी ख्याल नहीं करते हैं। कहते हैं कि शुरू शुरू में यानी कि पहले तीन युग में देवताओं अपना भाग लेने यज्ञ में भी आते थे, कलियुग में घबराते हैं, आना ही नहीं, दूर रहते हैं। यहां कली का ऐसा प्रभाव है, भौतिक जगत में भगवान जब अंतर्ध्यान 5000 साल पहले की बात है, तब उसके बाद कली को प्रवेश किया। कली का पहला धंधा गौ हत्या, पहला धंधा धर्म का नाश करना। यदि धर्म के नाश में हम एक तरफ धर्म के पूछ पकड़ते रहते हैं लेकिन दूसरी तरफ नाश भी करते रहते हैं, कैसे? जब नाश होता है तभी समझो कि रामायण कथा के बाद तुरंत हम ये भूल जाते हैं कि हमें शराब नहीं पीनी चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, तुरंत भूल जाते हैं। जब तक रामायण चलता है तब तक ठीक, हाँ कुछ है, पर लेकिन जैसे खत्म हो गए तो अपने अपने धंधे में चल जाते हैं। यानी कि शौच कुंजरवत, हाथी निर्मल जल में स्नान करता है लेकिन जैसे बाहर आता है तो अपने पर पहले धूली डालता है। तो सफाई क्यों की भैया? आवश्यकता क्या थी? नहाने की क्या आवश्यकता थी? अरे अन्य बहाना निकाले तो नहाना पवित्रता लाना है। यदि गंगा जल में स्नान करते हैं लेकिन गंगा जल में ही चाय पीना पसंद करते हैं तो क्या है? गंगा की भावना दूषित करते हैं। गंगा तो कभी दूषित नहीं होगी लेकिन जो पवित्रता हमारे में आनी चाहिए वो नहीं आएगी। कभी इंटॉक्सिकेंट या जो शरीर को बंधन में रखती है उसको अपवित्र करने की क्या आवश्यकता? यानी कि हमारी बुद्धि पवित्र नहीं हुई है। ये बातें बहुत स्पष्ट है। लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते? कभी तमोगुण की वृद्धि होती है। हमें महामुश्किली से तो हमने क्या खाया याद नहीं रहता है, तो भगवान की याद हमें कैसे आएगी? तमोगुण द्वारा नहीं आती, रजोगुण द्वारा आती ही नहीं। सत्वगुण में स्थिर रहते ही हम थोड़ा कुछ कर सकते हैं। तो कम से कम ये मौका हमें मनुष्य जन्म में छोटी सी जिंदगी में भी मिल जाता है। लेकिन लंबी आयुष्य देवताओं की, जहां इतना बिजी रहना, इंद्र जब जब देवताओं के सामने असुरों के सामने लड़ता है और जीत जाता है तो क्या नशे में पड़ जाता है, कि शिव जी जैसे के महादेव का भी अपमान कर देता है इंद्र। जलंधर की कथा पता है? तुलसी और जलंधर, तुलसी विवाह करते हैं, इंद्र का अभिमान चढ़ जाता है तो वो क्या क्या नहीं होता है उसको, परेशानी ही परेशानी। लेकिन भक्ति ही एक ऐसी चीज है जो देवताओं को वहां दुर्लभ है स्वर्ग में, और मनुष्य को इस कलयुग में भी अति दुर्लभ जो मिल जाती, सुदुर्लभ बहु संभवान्ते, ये मनुष्य देह पाना भी अनेक अनेक 84 लाख योनि में घूमते ही बाद में मिलता है। देवताओं की योनि ऊपर होगी, हाई क्वालिटी होगी, लेकिन वहां भी जन्म मरण तो चालू है, उसका क्या है? वहां भी ईर्षा झगड़े चालू है, तो वहां जाने से फायदा क्या? फायदा तो वहां होता है कि एक बार जाकर वहां वापस आने की भी कोई चिंता नहीं, यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। ये भगवान का एड्रेस है, पता है। एक बार एक सज्जन आए थे, जब हम भरतपुर में थे, वो मुझे कह रहे थे कि स्वामी जी स्वामी जी, हमें नारद मुनि को खत लिखना है। नारद मुनि को खत लिखना है, आप जरा एड्रेस दे दोगे? आप लोग तो जानते हैं कि वो लोग कहाँ रहते हैं। कहाँ? बोला भगवत गीता में भगवान का एड्रेस पता है, और उसके परिकर जहां भगवान होते वहां वो होते हैं, सही ना? खत मिल जाएगा, इस पते पर लिख दो। न तद्भाषयति सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। सिर्फ आप इतनी स्टैंप लगा दो जो पहुंच जाएगा, बिना स्टैंप खत नहीं पहुंचेगा। एड्रेस तो दे देता हूं लेकिन स्टैंप भी लगानी पड़ेगी। कौन सी स्टैंप होती है? दीक्षा की। दीक्षा की स्टैंप लगा दो, बाद में खत पहुंचेगा। लिखना तो है ही लेकिन स्टैंप लगाओ, क्योंकि नारद मुनि की परंपरा में भी ताना पड़ता है, सही। तो कहने का मतलब है कि लोग ऐसी अपने दिमागी चक्रावे से बात करते हैं कि जैसे नारद मुनि पर जोक लगा रहे। पीपल वॉन्ट टू मेक ए जोक ऑन नारद मुनि, इसलिए फिल्म में आप हमेशा नारद मुनि को जोकर के रूप में ही देखते। अरे ये जोकर नहीं है, जोक इज ऑन यू, जो ना समझे। चार कुमार को समझने की ताकत नहीं, परमात्मा को समझने की ताकत नहीं, तो विशुद्ध भक्तों को समझने की ताकत कहां से आ जाएगी? बेहतर है उनकी परंपरा चलकर इनका वचन भक्ति नारद भक्ति सूत्र पढ़ के पता चलता है कि ये जोकर नहीं है, ये नारद मुनि को बताते हैं। लंबी सीखा एंटीना जैसी रखते हैं, यानी कि उसका दिखावी जोकर जैसा बना देते हैं। अरे होता है क्या? मूर्खता है। ये नारद मुनि प्रहलाद के गुरु, स्वयं भगवान के अवतार व्यासदेव के गुरु बनकर आते हैं, तब the joke is on us, not on him। तो कहने का मतलब है कि ये पृथु महाराज की शिक्षा, पृथु महाराज क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि देवताओं भी मोहित हो जाते हैं इस परमात्मा तत्व को सुन, तो हम सामान्य मनुष्य झूठे नतीजे पर नहीं आए। कोई कह देता है आत्मा सो परमात्मा, इसका मतलब उसे पता नहीं के लिए क्या कहने वाला, आत्मा और परमात्मा एक है क्या? तो कठोपनिषद झूठा है, तेरी फिलोसफी कहां से लाया तू? ऐसी समझदारी गलती वाली क्यों? तेरे पास कोई प्रमाण है ऐसे कहने का? तो मायावादी धर्म का रूपांतर कर देते हैं अपनी लाभ प्रतिष्ठा पूजा के लिए, ये धर्म की हानि। लेकिन एक विशुद्ध भक्त के द्वारा भक्ति की परंपरा चालू रहती तब वो समझा सकते हैं कि देखो पृथ्वी महाराज क्या कह रहे हैं। इसमें न तो देवताओं का अपमान है न कुछ, लेकिन सबकी व्यवस्था है। वो समझना मनुष्य के लिए बड़ा महामोला मौका। ये कौन समझ सकता है? प्रभुपाद जी सातवें श्लोक में इस पर थोड़ा दृष्टिपात करते हैं। सुनो, ये बहुत महत्व का विषय है कि हम यहां भगवान के सामने उपस्थित हैं। भगवान के परमात्मा तत्व को देवता लोग भी समझने में मुश्किल आती है, ऐसा वचन एक पृथु महाराज का। पृथु महाराज ये बोलकर किसी का अपमान नहीं करते, पृथु महाराज स्वयं भगवान के अवतार। पृथु और अर्ची दोनों साथ साथ में पैदा हुए और वो भी वेण, वेण के शरीर को ब्राह्मणों ने मारा क्योंकि बहुत दुष्ट राजा था। इनके पिताजी तो थे बड़े अच्छे, लेकिन ये इनको छोड़ गए और चोरों का सरदार है। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि चोरों का सरदार कम से कम चोरों को तो कंट्रोल कर पाएगा, थोड़ी तो शांति मिलेगी। लेकिन ये ब्राह्मणों की धारणा कुछ गलत निकली। उन्होंने देखा कि वेण को राजा बनाकर और दुष्टता का ही प्रचार हो रहा है, तो करें क्या? वो भी ब्राह्मणों को हटाने लगा, सबको मारने लगा। पृथ्वी भी इसकी दुष्टता से वो ज्यादा सहन नहीं कर पाती, उसने भी सारा उसके कार्यवाही जो अन्न पकाना, गौधन की रक्षा करना, कुछ नहीं हो रहा। लोग दुष्काल में पड़ गए ऐसे दुष्चरित्र को आए। तो ब्राह्मण ने सोचा हम ही ने तो उसे राजा बनाया है, चलो हटाओ उसे, निकालो। तो वेद मंत्र द्वारा उसको मार दिया। लेकिन अभी किसको बुला ले, किसको प्रकट करे? चलो वेद मंत्र द्वारा करो। तो उन्होंने जंगा खोली तो उसमें एक निषाद निकला, काला हब्सी जैसा निषाद। वो निकलते ही पिता का आचरण करने लगा, दुष्टता, चोरी करने लगा। इसलिए ब्राह्मणों ने उसे भगा दिया, जाओ अफ्रीका जाकर रहो। ज्यादातर ये जो निषाद प्रजा है वो चोरों की सरदार होती है, चोरी करना उनका मूल स्वभाव है। तो वैदिक संस्कृति में ये आता है, महाभारत में भी ऐसा लिखा है, सही। लेकिन ये तो निकलना निकला, चलो दूसरा प्रयत्न करो। तो पृथु महाराज की बाहें घोलकर अपर पोर्शन से दो व्यक्तित्व निकले, वो पृथु और अंची, भगवान के अवतार लक्ष्मी नारायण दोनों साथ साथ लेते जाते पृथु और अर्ची के रूप। पृथु महाराज ने आकर ही पहले ही अपना तीर बाण चढ़ाया और पृथ्वी को चैलेंज दी, चलो सारी चीज पैदा करने, क्योंकि मैं नीति इत्यादि सब कुछ रिस्टोर कर दिया। तो पृथ्वी सोचने लगी ये कौन है, उसने गैया का स्वरूप धारण किया और भागने लगी। पृथ्वी ने देखा कि ये तो मुझे चुनौती दे रही है, तो उसके पीछे दौड़े। पृथ्वी का जो ये डिटर्मिनेशन निश्चय, उसे पृथ्वी सोचने लगती है कि यदि ये तो मुझे मारने की धमकी दे रहे, भाग कर कितना जाऊं। लेकिन इसकी पहचान तो करने दो। तो बोलती जा रही है कि हमें क्या मालूम, इस दुष्ट ने तो सारा हमारा सत्यानाश किया है। वेण, आप भी मुझे मारने के लिए तैयार हो रहे हैं? तब प्रभु ने कहा कि हम आए हैं सारी पृथ्वी की रक्षा करने के लिए और कुछ भाग रही है, तुझे पता नहीं, पहचान करने में दिक्कत रहती है। तब पृथ्वी उठी, उन्होंने कहा चलो मैं आपकी दासी। तो पृथ्वी ने सारा रिस्टोर किया, सारी प्रजा संतोष से रहने लगी। उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ में देखो भागवे ने ये चार को मार किया दिया। पृथ्वी महाराज ने काफी शिक्षा दी और इसमें ब्राह्मण वर्ग जो भगवान के वाहक है, वैष्णव भगवान के भक्त है, जो भगवान के वाहक है, उनकी संतुष्टि से ही भगवान संतुष्ट होते हैं। ये हमने सुबह पढ़ा, तो इसी तरह हम ये श्लोक में भी आगे भगवान का परिचय कराने के लिए श्रीमद् भागवतम संपूर्ण रूप से काबिल। यदि हम उसे थोड़ा पद्धति से समझे तो अवश्य हमें बहुत लाभ होता है। तो इस श्लोक काफी स्पष्ट है। प्रभुपाद जी आगे क्या कहते थे वो मैं तुरंत संक्षिप्त में बता देता हूं। जब बड़े बड़े वैष्णव आचार्य चार कुमार जैसे जब सामान्य मनुष्य के सामने उनको दिखाई नहीं देते, जब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को मिलने गए तो सनातन गोस्वामी इतनी गंदी हालत में थे, वस्त्र भी टूटे फूटे, दाढ़ी हो गई थी, नहाए नहीं थे कितने दिनों से। तो वो जब चंद्रशेखर आचार्य के दरवाजे पर खड़े हुए, चैतन्य महाप्रभु अंदर थे, तो चंद्रशेखर आचार्य ने उनको समझने में गलती कर दी। चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि सनातन आया है, वो तुरंत दौड़े और उनके गले लगते हैं। तो जो चंद्रशेखर आचार्य गलती करे, बाद में पता चला कि ये तो महान भक्त है। तो सामान्य मनुष्य व्यक्ति कैसे आती है क्या होती है, लेकिन इनका चरित्र तो अदृश्य रहता है सामान्य मनुष्य का। यानी कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विघ्ननिया भुजीय, वैष्णव की क्रिया मुद्रा यानी कि विशुद्ध वैष्णव कैसे आता है जाता है काम करता है, वो सामान्य मनुष्य की तरह हमें दिखाई देता हो, फिर भी वैष्णव है इसलिए इनका अपराध अक्षम्यता है, वो उसकी क्षमा इसके अलावा कोई नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकते। तो हमें ये निर्णय पर आना चाहिए कि भगवान शरीर के हृदय में और उसके विशुद्ध भक्त के हृदय में भी होते हैं। लेकिन जो ये भौतिक गुणों की असर में जब तक रहते हैं हम, तब
ऐसे महान वैष्णव को पहचानने में हम गलती करते हैं। तो भगवान के विशुद्ध स्वरूप श्यामं त्रिभंग ललितं नियत प्रकाशं कैसे समझेंगे? भगवान का ये त्रिभंग शरीर जो दिखाई देता है राधा वृंदावन चंद्र के, तो उसको कैसे समझें? उनको तो मूर्ति ही बात है। लेकिन जो व्यक्ति अर्चे विष्णु शिलादि भगवान को पत्थर समझता है, गुरु सु नरमति गुरु को सामान्य मनुष्य के रूप में देखता है, और वैष्णव जाति बुद्धि वैष्णवों में जाति बुद्धि करता है, भेदभाव करता है, ये सब नरक ले जाने वाली बुद्धि कहलाती है, दुष्ट बुद्धि है। इसलिए वैष्णव को ये अपनी चमड़ी की आंखों से नहीं देखना चाहिए, न तो भगवान को चमड़ी की आंखों से देखना चाहिए, गुरु को कैसे देखना चाहिए? आंखों से नहीं देखो, कैसे देखो? हाउ टू रियलाइज, कानों से देखो। गुरु क्या कहता है, कानों से उसे देखने का प्रयत्न करो, आंखों से देखने का प्रयत्न नहीं करो। यानी कि सुनकर सत्य का परिचय करो। आंख चक्रावल में डाल देगी, लेकिन कान सत्य का परिचय कर सकता है। और ये देखने की कला में हर एक को अपनी इंद्रियों को पवित्र बनाने की आवश्यकता रहती है। तो धीरे धीरे हम वैष्णव कौन है और विष्णु कौन है समझ सकेंगे, भगवान कौन है वो समझ सकेंगे, देवता कौन है वो भी समझ सकेंगे। चैतन्य महाप्रभु इसलिए ये समझाने के लिए अपने नाम की शक्ति का ही प्रचार करके पवित्रता अपनी पांच पांच इंद्रियों में पवित्रता आ जाए, इसलिए जप की महिमा देकर आए। भगवान स्वयं हरे कृष्ण महामंत्र का जप के लिए भगवद्गीता में आग्रह करते हैं कि यदि सारे यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो अवश्य हमें ये पवित्र करने वाली जो यानी कि अपने आत्मा को पवित्र करने वाली, अपनी इंद्रियों और मन को पवित्र करने वाली पद्धति का उपयोग करना चाहिए, तो अवश्य भगवत प्राप्ति आसान बन जाएगी। आप सभी का धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न है? दो चीजें हो सकती है, समझने में मुश्किलें आती है तो हमारी गलती कहलाती है कि हम आपको समझा नहीं पाए सही। हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हम विनती करते हैं समझ में आया नहीं आया तो पूछो। यानी कि मैं पूछता हूं फिर भी आप बोलोगे नहीं, पूछोगे नहीं तो जिम्मेदारी मेरी हुई नहीं। ये तो जिम्मेदारी का काम है।
जब मैं उठकर चला जाता हूँ महाराज जी, एक काफी भारी विषय है हमें समझने में दिख रहा। तो पूछो ना, उठते पहले पूछो। क्या आप मान लेते हैं कि परमात्मा तत्व समझने में ब्रह्मा जी और शिव जी को भी मुश्किल भी होती है? आप मान सकते हैं? मान सकते हो? अरे आज तक सारी जिंदगी मैंने पूजा की है, उसका क्या? मेरा विश्वास तो शिव जी पर है। और ये भागवत क्या कह रहा है, मैं कैसे मान? शिव जी को पढ़ने वाले को तो अवश्य प्रश्न होना ही चाहिए कि क्या कह रहे हैं। शिवजी की पूजा करने वाले कितने हैं? वहां तो क्या आपको ये प्रश्न नहीं है, शिवजी गलती कर सकते हैं क्या? ओ वाह, आप मुझे समझाओ कि परमात्मा को समझने में शिवजी भी कैसे गलती कर सकते हैं, बताओ तो सही।
मेरी समझ में ये आया है कि जैसे जितना मैं जानता हूँ वैसे तो आपके ज्ञान के मुताबिक में सूरज के दीपक
अरे ऐसा नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जब ये प्रसंग की बात हो रही है तो प्रथु महाराज भगवान के अवतार ये स्वयं कह रहे हैं कि ब्रह्मा और शिव जी की परमात्मा के तत्वों को जानने में उनको काफी मुश्किल आती है, नहीं समझ पाते परमात्मा, बुद्धि कमी है। लेकिन यदि आप ये कहते हैं कि तो मुझे समझाओ कि कैसे शिव जी परमात्मा को नहीं समझता।
जितना मैंने सुना है कि सृष्टि की रचना के समय एक बहुत बड़ा प्रकाश था, या जितना कि मैं मुझे मालूम है, तो ब्रह्मा और शिव जी जो है ये ढूंढने को निकले हैं कि ये प्रकाश कहाँ से आया है और कहाँ तक जाता है। मतलब दोनों अलग अलग दिशा में सफर करते हैं और बहुत तो बहुत सफर करते हैं किंतु कुछ पता नहीं लगता है कि इसकी शुरुआत कहाँ है और इसकी अंत कहाँ।
तब शिवजी की पूजा क्यों इनको पता नहीं, उनकी क्यों पूजा करते?
शिवजी की क्यों पूजा करते हैं?
हाँ, जिनको पता नहीं कि प्रकाश कहाँ से आया, उनको ढूंढने जाते हैं।
ठीक इसी प्रकार जैसे मैं कि अपने गुरु की पूजा करता हूँ, मतलब ये कि गुरु जो है शायद परफेक्ट ना हो, गुरु जो है वो
तो शिवजी परफेक्ट नहीं है।
अब जो गलती करता है तो पता कैसे सकता है?
अरे जो गलती कर, क्या शिव जी ने क्या गलती की? परमात्मा को समझने में गलती करते तो माला क्यों करते?
माला
शिव जी के पास माला देखी है, हमेशा माला छोड़ते ही
हा? तो अगर उसके पास माला है उस माला को इस्तेमाल क्यों करता
है?
ये प्रश्न मैं
नहीं, माला क्यों करते हैं? गलती ना करे इसलिए माला करनी पड़ती है। जो परफेक्ट है ना उसका आधार लेना पड़ता है। इफ यू सर्व द परफेक्ट यू विल बी परफेक्ट, there is no other way. So Shivji is showing He may not be imperfect, but by his example, he shows that he is perfectly situated by accepting a perfect process.
How can you judge that somebody is perfect?
Because otherwise, what is necessary to hold mark?
That judgment depends on somebody. Somebody who will tell that somebody is perfect has to be perfect himself.
That's why perfect reveals himself, and imperfect has to follow his process.
That's what I'm saying. So imperfect is following Lord Krishna.
No. Who?
The imperfect is following Lord Krishna.
Everyone, okay.
Bhagavan
hai, he is all perfect Supreme Personality of God. Right. And therefore, everything has emanated from him.
Right.
So Shivji bhi inka vistar ye batate hain. Wo srishti ki utpatti mein hi Shivji ka sthan bataya gaya hai. Adhyatmik jagat mein कैसे रहना वो शिव जी भक्ति जगत में हमें आदि पिता होकर बताते महाराज आप महाराज हैं किसकी शिव जी की तो अरे कृष्ण इसलिए शिव जी प्रसन्न है आपको गारंटी जब ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं शिव जी को प्रणाम करते हैं शिव जी कहें ठीक है लेकिन बाद में शिव जी मुझे ये दे दो ये दे दो वो दे दो तो शिव जी परेशान हो जाएंगे इसलिए चले जा निकल यहां से एक तो नाम देता है मुझे नमस्कार करता है लेकिन मुझे ही परेशान करता है ये दे दो ये दे दो ये दे दो माला करने देता नहीं इसलिए वो स्मशान में चले जाते हैं कि वहां तो कोई आएगा नहीं भस्मीभूत होता है वहां तो स्मशान ले जाने में घबराते हैं हम लोग अकेले थोड़े जाते हैं कोई नहीं जाता अकेले शायद धूप चिपक जाए तो शिव जी शिवालय में आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो शिव जी बहुत प्रसन्न होकर आपको वृंदावन ले जाए गारंटी क्योंकि इनकी सारी भावना वृंदावन की है क्योंकि वो अपना मूल स्वरूप का जाप करते हैं शंकर्षण महाशंकर्षण मंत्र शिव जी करते हैं क्योंकि इनका रूपांतर शंकर्षण का शंकर में रूपांतर आदि पिता है भौतिक जगत का लेकिन आध्यात्मिक जगत में आदि पिता तो भगवान तो जीव कहां से आया है जिनका अंश है वो जहां है वहां से आया सही ना तो यू आर वर्शिपिंग ऑफ शिवा एज ए प्योर रिवोट दैट्स गुड शिव जी की कृपा आप पर बनी है लेकिन भगवान कृष्ण के सामने अलग पूजा नहीं करनी चाहिए पूजा एक की होती है इनमें शिव जी बहुत प्रसन्न हो शिव जी के फोटो रखें ले भी रख सकते हो अलग से पूजा नहीं करनी चाहिए पहले तो शिव जी को ही भोग लगा नहीं शिव जी प्रसाद खाएंगे भोग भगवान को चढ़ता है बाद में शिव जी को दे दो और बाद में पाकर इसी तरह देवी का भी यही स्थान है देवी को अलग भोग नहीं चढ़ता पहले भगवान को बाद में देवी को दे दो वो प्रसाद पाएगी और बाद में सबको पाए जहां लोग जानते नहीं ऐसी प्रथा जहां देवताओं का स्वयं का अपमान होता है एक मूर्ख मनुष्य अपनी अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति के लिए धर्म का भी आधार देते हैं तो वहां देवताओं का अपमान होता है वहां भगवान का परिचय तो होता ही जब देवताओं का अपमान होता है तो भगवान का परिचय कहां है भगवान का परिचय कराने के लिए हमें ऐसे सत्संग की आवश्यकता होती है जहां सत का ही परिचय हो सनातन सत्य सनातन ये व्यवस्था हमारे गुरु महाराज लाए श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद शास्त्र सम्मत होना चाहिए, ऐसे नहीं कि मनमानी भक्ति कर सकते हैं, वो तो उपद्रव पैदा करती है समाज में, समाज में उपद्रव होता है। तो समझ करके शास्त्र का आधार लेकर हमें भगवान की भक्ति करना। हाँ, अन्य अन्य इच्छा हो तो देवताओं की शरण के लिए इनकी जो कर्मकांडी उपासना इत्यादि होती है वो अलग भाग है। हाँ, लेकिन ये तो हमारी कामना की पूर्ति के लिए है, लेकिन देवता तो परेशान होते हैं। हाँ, वो देते हैं फिर भी हम उनको रिश्वत देना चाहते हैं, कर्मकांड ऐसा शॉर्ट कट मारो। जैसे कहते हैं कि शनि की पनौती है तो क्या करना चाहिए, तो ये खरीदो वो खरीदो, तो आता है ना जी टीवी में, खास करके यहाँ के लिए आपने देखा है कि तावीन में देखा है मोटर में टीवी में, और वो भी गुजराती बनिया बड़ा पंडित होकर ग्रहों की बातें कर रहा है। हाँ, कि किसी को ये ग्रह की पनौती है तो ये नंग पहनना चाहिए, मोती पहनना चाहिए, ये पहनना चाहिए, लाल परवाला पहनना चाहिए, और हमारे से ही खरीदो हमारे पास की आपको प्रामाणिक रूप से मिलेगा। अरे क्या तमाशा है, पंडित लोग होता है ये धर्म होता है क्या? सुबह देखा ब्राह्मण और वैष्णव जब भगवान को साथ साथ केरी करते हैं, दे रिमाइंड अस द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ पर्सनालिटी ऑफ गॉड। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।